नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद बजट सत्र का समापन। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार तेज। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने राजस्थान स्थित ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आत्म सशक्तिकरण और मानसिक कल्याण विषय पर आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना PMNAPS और SAPS ITI स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री सॉफ्ट लोन योजना तथा विदेशी भाषा कोचिंग कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के विषय पर ईटानगर में कार्यशाला का आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग उपायुक्त ने बोमडिला स्थित जनरल हॉस्पिटल में 100 दिन टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों पर छूट को 1 महीने के लिए बढ़ाया। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद बजट सत्र का समापन हुआ। लोकसभा में सत्र के समापन भाषण में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बजट सत्र के दौरान 93% कामकाज हुआ है।
ये सत्र 28 जनवरी 2026 को आरंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 31 बैठकें की जो लगभग 151 घंटे और 42 मिनट तक चली। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए।
श्री बिरला ने कहा है कि सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश हुए और 9 विधेयक पारित किए गए। इनमें वित्त विधेयक 2026, दिवालियापन और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2025, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के बजट सत्र को उत्पादक और सफल बताया। संसद पुस्तकालय भवन में बजट सत्र के समापन के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा है कि सत्र में केंद्रीय बजट और कई महत्वपूर्ण विधेयक सफलतापूर्वक पारित किए गए।
बहुत ही प्रोडक्टिव बजट सेशन रहा है। यूनियन बजट बहुत अच्छी तरह से पारित हुआ, फिर फाइनेंस बिल पारित किया गया है। दूसरे पार्ट में प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के स्टेटमेंट दिया। 3 दिन स्पेशल सिटिंग एक्सटेंशन किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम डिलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था, ये बिल पारित नहीं हो पाया। बाकी जितना भी सरकारी बिल्स थे सब पारित हुआ।
बजट सत्र की कार्यवाही के बारे में और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता दीपेंद्र कुमार।
संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन के साथ हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उससे भारत के सामने आ रही चुनौतियों पर दोनों सदनों में बयान दिया था। इसके अलावा लोकसभा में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने के प्रयासों पर भी चर्चा हुई। पहले यह बजट सत्र इस महीने की 2 तारीख तक चलना था, लेकिन महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए 3 दिन की विशेष बैठक के लिए विस्तारित किया गया। हालांकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने से संबंधित 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पास नहीं हो सका, क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। दीपेंद्र कुमार, आकाश।
भाजपा के लोकसभा सदस्य बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के संघीय ढांचे को बदलने और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयास को विफल कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण की सच्ची बदलाव के लिए निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और ये केवल राजनीतिक दावे पेच से हासिल नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में एक जनसभा में भाग लिया। भाजपा नेता और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर में एक जनसभा में शामिल हुए। असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के कई नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जनसभाएं की हैं। वहीं तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से कोडिसिया तक रोड शो भी करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैच केटी पटनायक ने राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में सुरक्षा बलों के कर्मियों के लिए आत्म सशक्तिकरण और मानसिक कल्याण विषय पर आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। उन्होंने कहा कि निरंतर सतर्कता, दुर्गम भूभाग, ऑपरेशनल अनिश्चितता और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थितियों के कारण अक्सर तनाव और मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में आध्यात्मिकता जीवन को एक गहरा उद्देश्य और स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति चिंताओं से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को एकाग्रचित कर पाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना पीएमएनएपीएस और एसएपीएस आईटीआई स्नातकों के लिए मुख्यमंत्री सॉफ्ट लोन योजना तथा विदेशी भाषा कोचिंग कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के विषय पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री न्यातो दुकाम और तेजू विधायक सह सलाहकार डॉ मोहेश चाय ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री दुकाम ने कौशल आधारित शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और श्रम की गरिमा के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में रोजगार पाने के लिए कौशल जरूरी हो गया है। आरक्षण के प्रावधान होने के बावजूद कौशल की कमी उद्योगों में अवसरों की सीमित कर देती है। इस कार्यशाला में लगभग 90 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें आईटीआई यूपिया और सागाली, देरा नाथू गवर्नमेंट कॉलेज, राजीव गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र एवं आईटीआई बोलिनोंग तथा यूपिया के पास आउट प्रशिक्षु शामिल हुए। अरुणाचल के वेस्ट कामेंग उपायुक्त डॉ दिलीप कुमार ने शुक्रवार को बोमडिला स्थित जनरल हॉस्पिटल में 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान 2.0 की शुरूआत की। जिले में कुल 68 गांवों में हाई रिस्क इलाके के तौर पर पहचाना गया है और वहां स्क्रीनिंग का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसके बाद मध्यम और कम जोखिम वाले गांवों में भी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस अवसर पर उपायुक्त ने टीबी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि टीबी से जुड़ा सामाजिक कलंक अक्सर लोगों को टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद भी सामने आने से रोकता है, इसलिए जनभागीदारी बेहद ही जरूरी है और समुदाय, धार्मिक नेताओं, पीआरआई सदस्यों और सिविल सोसाइटी का सहयोग बेहद अहम होता है। आज विश्व धरोहर दिवस है। ये दिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की विविधता, संवेदनशीलता और महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। एक रिपोर्ट।
विश्व धरोहर दिवस का उद्देश्य वैश्विक धरोहर स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ये स्थल केवल किसी एक देश की संपत्ति नहीं होते, बल्कि पूरी मानवता की साझा धरोहर होते हैं। भारत में भी अनेक विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो के मंदिर, हम्पी के स्मारक, अजंता एलोरा की गुफाएं, सुंदरबन डेल्टा और कितना ही कुछ। ये स्थल हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत स्मारकों, पुरावशेषों, पांडुलिपियों और ऐतिहासिक स्थलों से सुशोभित है। इनके संरक्षण के लिए पिछले एक दशक में नए सिरे से काम किया जा रहा है। इस कड़ी में पर्यटन, आजीविका और संस्कृति से जुड़ी पहले शुरू की गई हैं। विश्व धरोहर दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संजोकर रखना चाहिए। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
अमेरिका ने रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने संबंधी छूट को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार ये छूट अब 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में मौजूद रूस के तेल से संबंधित लेनदेन से संबंध में 16 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।